सुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासाम् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 31
भात्राणाम् प्रायणम् भात्रा या अनुतिष्ठति धर्मवेत् सा पुण्यबन्धु पुरुषः मरुद्भिः सा मोदते भात्राणाम् प्रायणम् भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवेत् सा पुण्यबन्धु पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते भात्रणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवेत् सा पुण्यबन्धु पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते भात्रणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवेत् सा पुण्यबन्धु पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते भात्राणाम् ज्येष्ठ भाइयों का प्रायणाम् मार्ग भ्राता आज्ञाकारी भाई या जो अनुतिष्ठति अनुगमन करता है धर्मवेत् धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञाता सह वह पुण्यबंधु अत्यधिक पवित्र पुरुषः पुरुष मरुद्भिः वायु के देवताओं का सह साथ मोदते जीवन का आनंद भोगता है। अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बड़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुद जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है जो अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल है। तात्पर्य विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोकों में भेजे जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अपने भाइयों के अति का अति आज्ञाकारी होता है उसे उनके ही जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और मरुलोक पहुंचने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करने तथा आध्यात्मिक जगत पहुंचने के लिए सलाह दी। हरे कृष्णा। आप लोग सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और विशेष स्वागत है हिजोलिनस भक्ति मातृ गोविंद साई महाराज जी का। और महाराज से आशीर्वाद की याचना करते हुए आज इस श्लोक पर कुछ चर्चा का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। नारद मुनि आप जानते हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनको शाप दिया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम तो अमल पुराण है
और श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौनिताय की जय। तो नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रतिनिधि हैं, और उनको शाप दिया जा रहा है प्रजापति दक्ष के द्वारा। तो एक बड़ी सी रोचक घटना है कि एक शुद्ध भक्त को शाप मिल रहा है और हम सब मिलकर उसकी चर्चा कर रहे हैं, और शाप भी कौन दे रहा है? प्रजापति दक्ष, जो कि हमने पिछला अध्याय था हंस गुहे प्रार्थना, उसमें देखा था कि दक्ष ने खूब तपस्या की थी और उसको भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। तो ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के दर्शन हुए हैं वो एक शुद्ध भक्त को शाप दे रहा है, और उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है और हम प्रातःकाल इसका चर्चा कर रहे हैं। यानी कि ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रसंग से सबके लिए बहुत सी शिक्षाएं प्रदान होती हैं। श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है और ये सब जो वैदिक शास्त्रों का एक पका हुए फल के समान है। जितने भी वैदिक शास्त्र हैं वो सब निवृत्ति मार्ग का अनुमोदन करते हैं। दो प्रकार के मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। वृत्ति का अर्थ है हमारी मनोवृत्ति, हमारे मन की क्या इच्छाएं हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है कि इसी भौतिक जगत में सुख भोगने की इच्छा। प्रत्येक जीव इस भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाना चाहता है, वो अपनी इच्छाओं को भरपूर पूरा करना चाहता है, वो है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग है जब वो इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का प्रयास करे, उस मार्ग पर प्रगति करे, वो है निवृत्ति मार्ग। तो निश्चित रूप से कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है? श्योर आप लोग तो प्रगति अपार्टमेंट से हैं, प्रगति जीवन में प्रगति करनी है हम सबको। तो प्रगति करने का मतलब क्या है इस संसार में? प्रगति करने क्या मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग है कि निवृत्ति मार्ग है? तो हम सबका उद्देश्य नहीं है कि हम संसार में प्रगति करें? तो हम लोग प्रगति करने में पूरा विश्वास रखते हैं, तो पूरा संसार वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग में जुड़ा हुआ है। और ये जो प्रसंग है, प्रजापति दक्ष प्रतिनिधि है प्रवृत्ति मार्ग के और नारद मुनि है निवृत्ति मार्ग के, और प्रजापति दक्ष नारद मुनि को शाप दे रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्र तृप्ति करना, यानी कि प्रेयस, जो हमें बहुत प्रिय लगता है, मन और इंद्रियों को प्रिय लगे। निवृत्ति मार्ग का अर्थ है श्रेयस, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन अंत में हमें बहुत ही मीठा परिणाम देगा। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से निवृत्ति मार्ग का पालन करेगा, चाहे वो वानप्रस्थ संन्यास या ब्रह्मचारी आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में है। यह मनुष्य जीवन वास्तव में निवृत्ति मार्ग के लिए ही मिला है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानेगा कि इस संसार में जो हमें सुख दिखाई देता है वो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। और वास्तव में जो संसार का सुख है वो दुख का बीज होता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवते आदि अंतवंतु कौनते या नातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार के सुखों से आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जो बुद्धू व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से आकर्षित हो जाएगा। नूनम प्रमोद करुते विक्रमा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। नूनम, निश्चय रूप से ही वो पागल है जो इस संसार में इंद्र प्रीति से आकर्षित हो जाता है, जो अपने इंद्रियों को प्रिय लगता है उसमें हम फंस जाते हैं। तो ये हुआ प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग हमें प्रॉमिस करता है बहुत बड़ा सुख, लेकिन वास्तव में होता है बहुत बड़ा दुख। आज के संसार में हम देखते हैं चारों तरफ जो वातावरण है वो हमें प्रेरित कर रहा है कि हम इंद्र तृप्ति करें। इंटरनेट है और आईटी है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेलीफोन के ऊपर हम पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकते। अपनी सारी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं एक टेलीफोन में पुश ऑफ द बटन से कर सकते हैं। तो ये आईटी वास्तव में जो है ये इंद्र तृप्ति है, आईटी इंद्र तृप्ति। और यही आईटी इंद्र तृप्ति बन जाती है इन्फानाइट टॉर्चर। आईटी का मतलब क्या हुआ? इन्फानाइट टॉर्चर। और जहां पर ये आईटी सिखाई जाती है आईआईटी, वो कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फानाइट टॉर्चर। तो सारे माता पिता का यही उद्देश्य होता है कि मेरा बेटा आईआईटी में चला जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फानाइट टॉर्चर में चला जाए, फिर वो आईटी सीखे उस आईटी से आईटी करे और फिर बाद में आईटी पाए. आईटी सीखकर इंद्रतृप्ति करे और बाद में इन्फाइनाइट टॉर्चर पाए, है नहीं मूर्खता? बताइए. बताया गया शास्त्रों में अगर किसी को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और वो भक्ति ना करके अपना पूरा जीवन कुटुंब के भरण पोषण में लगा दे, बस मैं और मेरा परिवार इसी में ही लगा दे, तो उसको बताऊं क्या टॉर्चर प्राप्त होता है? उसको रॉर ऑफ नर्क में जाना पड़ता है. और अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अपने गृहस्थी का पालन कर लिया वही सबसे बड़ी भक्ति है. भक्ति नहीं, उसको रॉर ऑफ नर्क में जाना पड़ेगा. और कई लोग इतने सेल्फिश होते हैं वो परिवार का भी पालन नहीं करते, केवल अपना पालन करते हैं, अपने देह के सुख की चिंता करते हैं, उनके लिए महारौरव नर्क है. तो ये प्रवृत्ति मार्ग बहुत खतरनाक है. तो निवृत्ति मार्ग का हमें पालन करना चाहिए. कैसे? ये आज हम चर्चा करेंगे. ये श्लोक बहुत हमें शिक्षा प्रदान करेगा. तो प्रेयस और श्रेयस में से हमें चुनना चाहिए श्रेयस को, और निवृत्ति मार्ग से हम आगे बढ़े. मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए, और कृष्ण से संबंध भूलकर हम अलग अलग जगह संबंध जोड़ रहे हैं. जब एक युवक का युवती से विवाह होता है, 25 साल के बाद उस युवती को मालूम चलता है कि अब इसको आपने अपना पति मानना है. ये आपके सास हैं, ये ससुर हैं, ये जेठ हैं, ये देवर हैं. कितने नए संबंध अचानक आ जाते हैं. अब आप मामा भी हो, चाचा भी हो, ताया भी हो, साला भी हो, जीजा भी हो, कितने है? और इन भौतिक जगत में संबंधों का अर्थ है नई नई उपाधियां, और उपाधि का अर्थ है, डेजिग्नेशन का अर्थ है नई नई जिम्मेवारियां, उत्तरदायित्व. और अगर इन उत्तरदायित्व को हमने नहीं निभाया तो हमें रिएक्शन मिलेगा. और अगर कोई व्यक्ति निर्धारित करते हैं कि युवक व्यक्ति चलो हम ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करेंगे, तो आप देखिए वो कितने इन सब जंजाल से, उसकी कितने डेजिग्नेशन से मुक्ति हो जाती है. और अगर समझ लो कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है और अपना जॉब छोड़ के आया, जॉब में मैनेजर था, एक डेजिग्नेशन थी, अब वो बेचारा ब्रह्मचारी है, वो भूल जाता है वो इंजीनियर है, भूल जाता है वो मैनेजर था, तो कितनी पदवियों को उसने छोड़ दिया. वो निवृत्ति मार्ग के पद पर अग्रसर है. तो निश्चित रूप से उसके लिए कृष्ण से संबंध जोड़ पाना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है. तो लेकिन जो लोग भक्त लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वो सभी साधु हैं, चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ में, संन्यास में है, ब्रह्मचार्य है. लेकिन उद्देश्य होना चाहिए कि हम निवृत्ति मार्ग का पालन करके शीघ्र अति शीघ्र कृष्ण से संबंध जोड़ें और इस दुनिया के जंजाल से छुटकारा पाएं. दक्ष ने बहुत तपस्या की थी, वो बहुत कुंठित था कि उसको जो आज्ञा प्राप्त थी संतान उत्पत्ति करने की, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था. बहुत तपस्या करने के बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, अब आप संतान की उत्पत्ति कर पाओगे. फिर उसने उत्साहपूर्वक 10,000 पुत्रों की एक टोली उत्पन्न कर दी. हरियश्व 10,000 पुत्र इकट्ठे, और फिर उन्होंने बोला जाओ आप संतान की और उत्पत्ति करो, लेकिन संतान की उत्पत्ति करने से पहले तपस्या करो, अपने आप को शुद्ध करो. सभी के सभी जो हरियश्व थे वो कहां गए थे? नारायण सर पे गए, और वहां पर उन्होंने खूब तपस्या की. वहां पर उनको कौन मिले? नारद मुनि. नारद मुनि देखा बड़े अच्छे बच्चे हैं, एकदम फ्रेश और सीधे साधे बच्चे और तपस्या में रुचि रखने वाले, तो बोले इनको क्यों जाने दें, क्यों इनका जीवन बर्बाद करें. तो बोला तो बहुत अच्छा, इनको प्रचार करना चाहिए. लेकिन नारद मुनि ने इनको सीधा प्रचार नहीं किया, नारद मुनि ने घुमा फिरा के बात की, रूपक दिया एक. वो रूपक क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग रूपक था कि एक ऐसा शहर है, उस शहर में तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा, एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, और उसमें जहां पर एक छेद है उसमें से भीतर घुसने वाला कभी निकल कर बाहर नहीं आता, वहां एक स्त्री है जो अत्यंत कुर्मागनी है, वह नाना प्रकार के वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करती है, और वहां जो पुरुष रहता है वह उसका पति है, उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है, एक 25 पदार्थों से बना हुआ अद्भुत घर है, एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियां करता है, और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज छुरों तथा वज्रों से बनी है. तुम लोगों ने इन सबको नहीं देखा, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो, तो फिर तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? बस ये सारी बातें थी. और वो जो युवक थे वो घूम गए, बोला कुछ बातें तो हैं, तो उन्होंने खूब सोचा इसके ऊपर, और क्योंकि वे अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति थे तो एक एक चीज का बात समझ गए कि वो जो स्त्री है वैश्य जिसके को बोला गया है वो हमारा मन है, और हम वो फंसे हुए व्यक्ति जो उसके पति हैं, और जो तेजी से घूमने वाला वो एक वस्तु है वो वास्तव में काल है। इस ढंग से एक एक बात के उसका रूपक एलिगरी को समझे, और फिर उन्होंने बोला कि मसत कर्म भीर भवेत, नारदमुनि बोलते थे फिर ये कर्म कांड कार्य करने का क्या लाभ। तो ऐसा करके इन सबके हरेशों के मनों में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने असली पिता की आज्ञा का पालन किया। असली पिता है शास्त्र, तो शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना। इस ढंग से हरियाश्व सबके सब भगवत धाम चले गए, और जब ये बात दक्ष को मालूम चली तो दक्ष को बहुत क्रोध आया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको सांत्वना दी और बोला उत्साहित किया और संतान की उत्पत्ति करो। उन्होंने फिर से संतान की उत्पत्ति की, और उसके बाद उसने क्षमा कीजिए 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, ठीक है ना। तो ये 1000 पुत्र जो उत्पन्न थे ये सबके सब आए, और अब देखिए दक्ष ने दोबारा से अपने 1000 पुत्रों की दूसरी टोली को भी क्या बोला कि संतान की उत्पत्ति करो, लेकिन संतान की उत्पत्ति से पहले क्या करो, तपस्या करो, और तपस्या करने के लिए कहां जाओ, नारायण सर पे जाओ। तो कोई पूछ सकता है कि दक्ष मूर्ख व्यक्ति था, जब मालूम था पहले ही नारद मुनि वहां पर हैं, और नारद मुनि पहले से 10000 पुत्रों को ले चुके हैं, तो दोबारा से 1000 पुत्रों को पैदा करने के बाद क्यों भेजा। लेकिन दक्ष ने फिर भी भेजा, क्यों क्यों भेजा बताइए। दक्ष ने गलत कार्य किया कि ठीक कार्य किया, क्यों भेजा। हां, हालांकि दक्ष कर्मकांड में फंसा हुआ था, लेकिन वो पिता होने के कर्तव्य को नहीं भूला। ये हमारी वैदिक शास्त्र संस्कृति की परिकाष्ठा है। ये देखिए कि हालांकि उसको बहुत क्रोध था नारद मुनि में, और उसको मालूम था नारद मुनि अभी वहीं पर है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर मैं 1000 पुत्रों को बिना तपस्या करवाए जबरदस्ती पारिवारिक जीवन में घुसा दूंगा तो इनका जीवन पशु तुल्य हो जाएगा। कितना आवश्यक है कि हम अपने को मनुष्य जीवन में प्राप्त करके हम अपने चरित्र को विकसित करें। आजकल हमें एजुकेशन दी जाती है, लेकिन चरित्र करेक्टर के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है, तो वास्तव में वो रियल एजुकेशन नहीं है, वास्तविक एजुकेशन नहीं है। अगर किसी को एजुकेशन प्राप्त होगी, विद्या प्राप्त होगी, तो निश्चित रूप से उसके चरित्र का विकास होगा। केवल लिटरेसी कह सकते हैं हम, वो ABC सीख जाता है, लेकिन वो रियल शिक्षा प्राप्त नहीं करता। लेकिन दक्ष को मालूम था कि 1000 पुत्र भी जा सकते हैं, लेकिन पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को ये च्वाइस दे, ये विकल्प दे कि वो कौन सा रास्ता स्वीकार करे। श्रील प्रभुपाद इसी अध्याय के 25वें श्लोक में इस बात बताते हैं कि वास्तविक पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को ये विकल्प दे कि वो किस मार्ग का अनुशीलन करना चाहता है। वास्तव में ये असली अहिंसा है। अहिंसा का पालन वही जीव कर सकता है जो कर्मों की सूक्ष्मता को समझता है कि कर्म प्रकृति के नियम कितने सूक्ष्म हैं, कितने सटल हैं। जो इनके ये सूक्ष्मता को नहीं समझता वो वास्तव में अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार में भौतिक जगत में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है। एक जो बच्चे का जन्म होता है कितना रोता हुआ जन्म लेता है, कितना खून से लथपथ होता है, जन्म अपने आप में बहुत हिंसक घटना है, वो अलग बात है हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। उसके बाद बुढ़ापा कितनी हिंसक घटना है, मृत्यु कितनी हिंसक घटना है। तो अगर जो संसार की इस वास्तविक हिंसा से किसी को छुटकारा दिला दे वही असली अहिंसा है। और पिता का यह कर्तव्य है कि वो संतान को पूरा मौका दे कि वो च्वाइस ले कि वो किस आश्रम का पालन करना चाहता है। उसका वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने इस संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाना है, और यह छुटकारा दिलाने के लिए इसके चरित्र को विकसित करना बहुत जरूरी है, इसको एक सज्जन पुरुष बनाना बहुत बड़ा कर्तव्य है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज के इस संसार में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। शास्त्रों में बताया गया है कि एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को पशु को भी अपने संतान के समान समझना चाहिए। हमारे घर में एक मक्खी और मच्छर भी है तो उसका हमारा ख्याल रखना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद जी के पिता कपड़े का बिजनेस करते थे, चूहे आके कपड़े काटते थे। प्रभुपाद जी के पिता गोरमोहन देव ने कभी भी चूहों को मारने की दवाई का उपयोग नहीं किया। चूहों कुछ खाने को मिल जाए वो कुछ चीनी रख देते थे कि चूहे चीनी खा लेंगे कपड़े बच जाएंगे। कुछ चूहों को भी एक ग्रस्त को अपने संतान के रूप में देखना चाहिए, लेकिन आज के समय में पशु को संतान न बनाकर संतान को पशु बनाया जा रहा है कि संतान पशु बन जाए, अच्छे ढंग से ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग कर ले, बस किसी ढंग से धन कमाना सीख जाए जिससे कि अच्छे ढंग से अपनी इंद्र तृप्ति कर ले। हमारा कर्तव्य हो गया, हमारा बेटा अच्छा पशु बन गया, दो प्यार वाला पशु, बस। दक्ष ऐसे पिता नहीं थे। दक्ष ने चाहा नहीं, हालांकि 10,000 पुत्र पहले चले गए हैं, उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया कि जाओ, अरे भाई बिना तपस्या किए बिना ये जाने कि विवाह किस लिए करना चाहिए, अगर कोई विवाह करेगा तो निश्चित रूप से वर्ण संकर उत्पन्न करेगा। आज के समय न युवतियों को सतीत्व की ट्रेनिंग दी जाती है, न युवकों को ब्रह्मचार्य की ट्रेनिंग दी जाती है, न सेलिबेसी की ट्रेनिंग दी जा रही है, न चेस्टिटी की ट्रेनिंग दी जा रही है। न युवतियों का चरित्र रह गया, न युवकों का चरित्र रह गया है। जब ऐसे लोग विवाह करेंगे तो केवल इंद्र तृप्ति के लिए विवाह करेंगे, और जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वर्ण संकर। और वर्ण संकर की उत्पत्ति समाज की सबसे बड़ी हिंसा है। जहां वर्ण संकर उत्पन्न हो रहे हो वहां समाज में शांति कैसे आ सकती है? तो कितनी बड़ी भूल हो रही है इस संसार में अज्ञानता के कारण। दक्ष ऐसे पिता नहीं थे। दक्ष ने बोला जाओ फिर से तपस्या करो, और देखिए उन्होंने भेजा, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से वहां पर नारद मुनि आ गए। अब नारद मुनि जी ने देखा कि अरे ये तो फिर से बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करके जल में बैठ के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि बिना तपस्या के हरे कृष्ण महामंत्र का जप इफेक्टिव नहीं हो सकता, है ना। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हमें तपस्या जरूर करनी चाहिए साथ साथ, और वो तपस्या इस कलयुग में बताई गई चार नियमों का सख्ती से पालन करना। तो प्रभुपाद और नारद मुनि ने देखा कि बहुत ही सख्ती से ये हरेश्वर के जो छोटे भाई हैं 1,000 की टोली, ये भी बहुत तपस्या कर रही है। तो नारद मुनि ने बोला इनका भी उद्धार करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि नारद मुनि कितने कुशल प्रचारक हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 10,000 पुत्रों का उद्धार करके नारद मुनि कूल हो गए, है ना, ठीक है बहुत प्रचार हो गया, 10,000 भक्त मनादि और क्या चाहिए। नहीं, नारद मुनि हमेशा देखते रहते हैं कहां मौका मिलेगा। वो अमोघ दर्शन है ना, उनकी जो दृष्टि है वो कभी वेस्ट नहीं जाती, उनकी जो दृष्टि है कृपा दृष्टि सब पे, जिस पे पड़ गई उसका उद्धार होगा ही होगा। तो देख रहे 1,000 लड़के आ गया, हाँ इनको भी पकड़ना चाहिए, है ना। देखिए ये एक प्रचारक का कर्तव्य है कि एक प्रचारक को हमेशा इस भौतिक जगत की व्यर्थता का प्रचार करना चाहिए। कुछ नहीं रखा इस संसार में, कुछ नहीं रखा, जहां उसको मौका मिले। नारद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं नारद मुनि सभी युवकों को निमंत्रण दे रहे हैं कि शीघ्र अति शीघ्र कृष्ण भावान्वित आंदोलन को ज्वाइन करो। सोचो मत, शीघ्र अति शीघ्र, जितने भी युवक हैं ये सोचने की बात ही नहीं है, जितना जल्दी आप कृष्ण भावान्वित आंदोलन को स्वीकार कर सकते हैं करो, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। तो इस ढंग से नारद मुनि ने देखा कि ये दूसरी टोली भी आ गई है दक्ष के पुत्रों की, अब इनका भी उद्धार करना चाहिए। लेकिन इस बार नारद मुनि को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा, कोई रूपक नहीं देना पड़ा, कोई प्रचार नहीं करना पड़ा। उन्होंने केवल ये कहा कि हे दक्ष पुत्रों, मेरे उपदेश वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हरियश्वों के प्रति अति वत्सल हो, अतएव तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। देखो भूल गए अपने भाइयों को। नारद मुनि ने उनको थोड़े सेंटीमेंट्स जनरेट किए, है ना, अपने भाइयों को याद करो, हरियश्वों को, है ना, भ्रातृवत्सल हो, अपने बड़े भाई कितना प्रेम करते थे आपसे, तो उन्हीं के मार्ग का पालन करो ना। तो ये कह के बस इतना प्रचार किया और कुछ नहीं। तो क्या हुआ उसके बाद, भ्रातृणाम प्रायणम भ्रात्रा योन दृष्टि धर्मवित्त। अब ये भी लोग थे समझदार थे, धर्मवित्त थे, धर्म का पालन करते थे। क्या बोला उन्होंने फिर, अपने ज्येष्ठ भाइयों के मार्ग का उन्होंने पालन किया। नारद मुनि बोला अगर ऐसा पालन करोगे, जो लोग अपने भाइयों से प्रेम करते हैं वो उच्च लोकों में मारुत लोकों में जाते हैं और मारुत देवों का उनको संत प्राप्त होता है, क्योंकि उनके भाई भगवतधाम चले गए हैं, आप उनका अनुसरण करोगे तो आप भी भगवतधाम चले जाओगे। एक थोड़ा सा प्रचार किया कि अपने बड़े भाइयों से कुछ सीखो, और तुरंत उन्होंने सीखा और उन्होंने भी भगवतधाम जाने के मार्ग का पालन किया। थोड़ा सा प्रचार, बस एक थोड़ी सी चिंगारी लगाई और ये कह के नारद मुनि चले। तो ये प्रचारक हैं। प्रचारक देखते हैं कि किस समय कितनी आवश्यकता है। कई बार ओवर पिचिंग से भी हमारा नुकसान हो जाता है। पहले जो हरेश्वर थे उनको बोलने की आवश्यकता थी समझाने की। अब देखिए क्योंकि उन्होंने अच्छे ढंग से गुरु की आज्ञा का पालन किया, नए बैच को खाली ये बताना है कि पुराने बैच को देखो और उसका पालन करो। यानी कि अगर हमारा पुराना बैच जो भक्तों का है वो अच्छी स्थिति में है तो प्रचार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम सब यहां पे कुछ नए बैच से हैं, कुछ पुराने बैच से हैं। कुछ हरियाणों की पहली टोली के लोग हैं और ये कुछ दूसरी टोली के लोग हैं। तो दोनों ही रूप में हमारा कर्तव्य है, हम कहीं सीनियर हैं कहीं जूनियर हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है तो दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य का कर्तव्य बन जाता है कि अब वो भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दे। उसको दोबारा से इस भौतिक जंजाल में फंसने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, भौतिक जगत से निकलने के लिए प्रयास होने चाहिए, वो असली शिष्य है। और अगर कोई शिष्य अपने गुरु की शिक्षाओं का सही पालन कर रहा है तो गुरु के मिशन में सबसे बड़ी सहायता है। गुरु का मिशन बहुत ही आसान हो जाता है। नारद मुनि का मिशन कितना आसान हो गया, क्योंकि हरियाश्व थे वो भगवतधाम चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद दूसरी टोली आई, केवल यही बोला भाई उनकी वो अपने बड़े भाई थे, कितना प्रेम करते थे, उनके मार्ग का पालन करो, वो भी चले गए। तो गुरु का मिशन कितना आसान हो जाता है, गुरु का कार्य कितना आसान हो जाता है अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का सख्ती से पालन करें। अगर यहीं पे वो छोटे भाई देखते कि बड़े भाइयों की दुर्गति हो रखी है, ना माया मिली ना राम, फ्रस्ट्रेटेड कुंठित घूम रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोले कैसे हो बस चलो कृष्ण चैंट एंड बी हैप्पी, बस खुद बेचारे रो रहे बेचारे। तो बोले क्या, मैं इसके पास जाऊंगा, कोई गड़बड़ है यहाँ पे, सब ठीक नहीं है ना, हमें किसी को बुलाते हैं आप प्लीज आइए हमारे मंदिर में आइए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना, इस संसार का एक वैकुंठ है। वो यहाँ पर आए, पहले ही शूज चौल पे बोले क्या है भाई यहाँ रखे, उसका जूता खो गया, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिली, खिचड़ी की लाइन में खड़ा हुआ, किसने धक्का मार दिया आगे बढ़ो, फिर अंदर आया किसने स्वागत नहीं किया, बक लोग गुस्से में उधर घूम रहे हैं, बोले क्या है ये वास्तव में वैकुंठ है, यहाँ पे अलग विशेष तरह की कुंठा है कुछ, है ना, वैकुंठ का एक मतलब होता है वे, मतलब विशेष, ये कुंठा बाहर की जगत से भी अलग है कुछ, सब कुछ इनके पास है फिर भी कुंठित हैं, ये विशेष कुंठा है। तो ऐसा इंप्रेशन नहीं मिलना चाहिए। और वो यहां पर आए बड़े सब उत्साहपूर्वक नाच रहे हैं, खुश हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े सब खुश हैं, तो बोले हाँ यहां वास्तव में कुछ अलग है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन से जुड़े हैं, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़े हैं। एक प्रसन्न प्रचारक, एक प्रसन्न भक्त सबसे बड़ा प्रचारक है। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर एंड अ ग्रुप ऑफ हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रीचर्स। कि सारे के सारे, एक भक्त खुश है बाकी नाराज है, नहीं, सारे भक्त खुश है, बोले बस यहां कुछ अलग ही बात है। तो ये हमारा कर्तव्य है। आप बोले प्रभु जी नकली खुशी कब तक चलेगी, हाँ हाँ हरी बोल करके उछल तो जाए, बाद में फिर दुखी हो रहते हैं, फायदा क्या, कब तक मैं हरी बोल नकली उछलता रहूंगा, वास्तव में अंदर में हॉरिबल हूं मैं हरी बोल रहा हूं। तो चाहे हम अंदर से हॉरिबल भी क्यों ना हो, लेकिन हमें जोर जोर से हरी बोल बोलना चाहिए, हरी बोल बलरी बोल बोलते हुए हमारा हॉरिबल बंद दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी तपस्या है, इस संसार में खुश रहना भी तपस्या है। हम लोग एक ऐसे पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं जोर जोर से हंसूंगा, ऐसे नहीं होगा। हमको अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए, सुखी रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने ब्लेसिंग्स, अपनी जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए उसको गिनना चाहिए कि मेरे को कितने बड़े बड़े आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। श्रील प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक में बोलते हैं कि एक भक्त का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हमारे जीवन में कोई ना कोई एक भक्त दूसरे भक्त कुछ ना कुछ किसी ना किसी से कुछ चुट मन में वो रहता है, घाव रहते हैं। तो बोलते हैं एक भक्त का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो किसी शिष्य ने क्या दिया, किसी शिष्य ने क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद बोले एक भक्त का सबसे बड़ा दुश्मन है वो खुद ही वो सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रभुपाद कहते हैं गिव अप दिस रास्कलडम, ये बेकार के अपने इस धूर्तता को छोड़ो और अच्छे ढंग से जो मैं आदेश दे रहा हूं उसका पालन करो, कोई आपका दुश्मन नहीं है। तो एक भक्त है, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो प्रभुपाद बोलते हैं वो भक्त नहीं है। इसलिए हम सब लोगों का हरयश्व के रूप में अगर अपने आप को हम देखें तो हम सबको एक आदर्श उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। प्रभुपाद जी के इस मिशन में सबसे बड़ी सेवा हम ये कर सकते हैं कि हम एक आदर्श भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, क्योंकि हम किसी के लिए प्रेरणा का सूत्र बन सकें ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा है। हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए कि मैं दूसरे के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनूं। इससे क्या होगा कि मैं खुद बहुत तीव्र गति से प्रगति करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोगलापन दिखाएं, मिथ्याचारी बने। हमारे अंदर बहुत से अनर्थ हो सकते हैं, बहुत सी कमियां हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे दूसरों को प्रेरणा प्राप्त हो। हम ऐसे उदाहरण ना बने कि लोग बोले देखो बेचारा भक्ति करने आया था इसकी क्या दुर्दशा हो गई। ऐसा उदाहरण नहीं, विशेषकर जो ब्रह्मचारी आश्रम में है ना, आचार्य बताते हैं कि एक दुखी ब्रह्मचारी ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक ब्रह्मचारी जो हंस नहीं रहा, सुखी नहीं है, तो मतलब कि बेचारे ग्रस्त को क्या प्रेरणा मिलेगी। बोले ये भी दुखी है, क्या मतलब जीवन में है क्या फिर। ब्रह्मचारी को तो हमेशा ही उत्साहित और सुखी ब्लिसफुल होना चाहिए, और जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त हैं उनको देखकर अच्छा लगना चाहिए कि हाँ देखिए कितने अच्छे ढंग से भक्ति कर रहे हैं, फिर उनका उससे उत्साह मिलना चाहिए और प्रेरणा मिलनी चाहिए। गृहस्थों की डेडिकेशन को देखकर ब्रह्मचारियों का उत्साह बढ़ना चाहिए कि ये लोग इनके पास कितना कम समय है, इतनी इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर भी कितने उत्साहपूर्वक भक्ति कर रहे हैं, डीटी वर्शिप भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ना चाहिए। इसलिए एक दूसरे आश्रम के अंदर और आश्रम के बाहर भी हम एक दूसरे को प्रेरणा का स्रोत दे सकते हैं। इसका मतलब हम ये ना समझें जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं कि हमने बोला कि सबको निवृत्ति मार्ग का पालन करना है, तो हम कई बार ही बहुत ज्यादा वैराग्य दिखाना शुरू कर देते हैं ना, सब बेकार है, घर में जाएंगे क्या है, बच्चे क्या है, असली बच्चे थोड़ी है, क्या है पत्नी, तुम ही मेरे लिए बंधन का कारण हो, तुम माया हो, पत्नी पति को बोले तुम माया हो, तुम्हारे कारण मैं फंस गया, बच्चे सब क्या है सरदर्द छोड़ो, मेरा सब माला करेंगे बैठ के। तो कई बार ऐसा हो जाता है, और हमारे प्रचारक भी उनको फोन करते हैं, प्रभु मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, बोले हरे नाम एव केवलम। तो क्या है ये सब, ये जो फाइलों में फंसे पड़े हो, फाइल काली कर रहे हो, गौरव नर्क में जाओगे प्रभु, गौरव नर्क में। तो वो क्या करते हैं, वो ऑफिस छोड़ के, हमने देखा ऐसे भक्त, अब वो सच्ची कहानी बता रहे हैं, वो ऑफिस की कुर्सी से नीचे बैठ के उतर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 है ना, और ऑफिस का पियन आया, अरे आपको क्या हो गया, तो पूरे घर में एकदम हाहाकार मच जाती है कि हमारे बेटे को क्या हो गया। ऐसे होता है, नहीं हमसे मजाक नहीं कर रहे, आपको ट्रू लाइफ इंसिडेंट बता रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं खाली। तो ये गलत है। भागवतम के सातवें स्कंद में नारद मुनि जी बताते हैं मनोविरक्ति रक्तः, मन से विरक्ति रखो लेकिन ऊपर से ऐसे रखो जो पूर्ण रूप से अनुरक्त हैं इस संसार में। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यही शिक्षा दी, बिल्कुल ऐसा व्यवहार करो कि इस पारिवारिक जीवन में पूर्ण रूप से रक्त हो, पूर्ण रूप से। भक्तिनो ठाकुर बताते हैं कि ग्रस्त भक्त हर जगह जाएगा, सारे फंक्शन अटेंड करेगा, ऑफिस में जाएगा, सही सलामत काम करेगा, और ऐसा दिखाएगा कि वैसे परिवार की भी चिंता करता रहता है, लेकिन अंदर से वो केवल कृष्ण की चिंता करता है। बस हमें ये देखना है, तो इस बात को हमें सही ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। और हम सबको उदाहरण बनना चाहिए ताकि हम जो नए भक्त जुड़ रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित कर सके। और नए भक्त के रूप में हमें देखना चाहिए अपने वरिष्ठ भक्तों को और फिर हम उनका मार्ग का अनुशीलन करें। जैसे हमारे एक भक्त थे, वो फुल टाइम है भी बड़े मंदिर में, तो सोच रहे थे ज्वाइन करूं ना करूं, ज्वाइन करूं ना करूं, क्या होगा, घर में मम्मी है, दिन में 3 बार खिलाती है, जो बात चाहता हूं वो खिलाती है, यहां मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, तरह तरह की चिंताएं थी। तो आया संडे प्रोग्राम में, प्रभुपाद को प्रणाम किया, सामने देखा तो एक बहुत पुराने भक्त बैठे थे व्यास आसन पे, बहुत ही अच्छे स्वस्थ मोटे ताजे बड़े से है। तो अचानक प्रभुपाद ने उनको प्रेरणा दी, अरे देखो ये भक्त 20 साल से है और कितने स्वस्थ है, खाते पीते मोटे ताजे है, तो ये 20 साल से यहां सरवाइव कर रहे हैं, तो मुझे क्या दिक्कत आएगी, अभी ज्वाइन करता हूं। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उनके एक छोटे भाई भी थे, बोले भाई तुम चले गए, मेरे से 16 माला नहीं होती, मुझसे घर में नहीं रह जाता, मैं अभी आता हूं। तो दोनों भाइयों ने ज्वाइन कर लिया। तो ये संभव है, भात वत्सला। जैसे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, वैश्वरूप अद्वैताचार्य के घर में जाया करते थे और उनसे भागवत कथा सुनते थे। सच्ची माता निमाई पंडित को भेजती थी, जाओ बड़े भाई को बुला कर लाओ। छोटे से प्यारे से निमाई बालक जब जाते थे तो वहां अद्वैताचार्य शिवास पंडित सब बड़े बड़े वैष्णव होते थे, जब देखते थे निमाई आ रहे हैं और विश्वरूप को खुदोती खींच के बुला रहे हैं, सच्ची माता बुला रही है, और सारे के सारे वैष्णव निमाई की सुंदरता से बहुत आकर्षित हो जाते थे और निमाई किसी ढंग से विश्वरूप को बुलाकर लाते थे। विश्वरूप के अंदर इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि विश्वरूप ने एक दिन संन्यास ले लिया, घर छोड़कर चले गए। उसके बाद भी निमाई अद्वैताचार्य घर जाते रहे, तो सच्ची माता को क्या भय हो गया कि कहीं ये भी घर छोड़कर ना चला जाए। लेकिन क्या हुआ, निमाई ने भी संन्यास ले लिया। तो सच्ची माता ने क्या बोला अद्वैताचार्य को कि अद्वैत नहीं तुम द्वैत हो, दोगले पर दोगले व्यक्ति हो, ऊपर से क्या हो और अंदर से क्या हो। उसके बाद भी संन्यास लेने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु अपने भातृ प्रेम दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा, विश्वरूप को मुझे खोजना है। तो वास्तव में जो भक्ति है, कृष्णा भानामित आंदोलन है, ये पारिवारिक जीवन के विरोध में नहीं है। इट्स नॉट अगेंस्ट फैमिली लाइफ, इट्स अबाउट रियल फैमिली। ये वास्तविक प्रेम के विषय में है, ये वास्तविक पारिवारिक जीवन के विषय में है। श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित किया माखनलाल प्रभु जी ने, जो कि है हिजोलिनेस भक्ति माधुरी गोविंद साहब महाराज, और इनके भाई थे कौन, नर नारायण ऋषि। तो हम देखते हैं दोनों भाइयों ने प्रभुपाद जी के आंदोलन में ज्वाइन किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में मुकुंद दत्त वासुदेव दत्त दो भाई थे, और कौन थे, गोविंद घोष वासुदेव घोष, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अनुपम गोस्वामी भाई हैं। अगर हमारा एक बेटा कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन में जुड़ गया है तो दूसरे बेटे को हम संभाल के ना रखें। अगर दूसरा बेटा भी है उसको भी दें। और पंजाबी बाग में तो हमारा बहुत ही विशेष कल्चर है ना। अभी जो पीछे दीक्षा हुई थी 2011 में, 2010 में 30 अप्रैल को, उसमें 18 ऐसे परिवार थे जिसमें माता पिता ने अपने बच्चों के साथ दीक्षा प्राप्त की थी, है ना। हैं कुछ यहाँ पे माताएं बैठी हैं, कुछ मदर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने बच्चों के बेटों के साथ, ब्रह्मचारी बेटों के साथ दीक्षा प्राप्त की थी, ऐसा था। तो कोई भी हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वास्तव परिवार बनता है। हम लोग भक्ति से डरे ना कि भक्ति करेंगे परिवार छूट जाएगा, भक्ति करेंगे तो परिवार मिलेगा। नारद मुनि बता रहे हैं अपने बड़े भाइयों को जाकर मिलो, वो 10,000 1,000 तुम हैप्पी फैमिली वहां पर होगी। अच्छे जाओ भाइयों के साथ खूब एंजॉय करो, वो हमारा असली परिवार है, वहां जाके हमें मिलना है, बैक टू होम, घर जाना है, हमने वापस घर जाना है। तो ये भक्ति पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन तोड़ने के लिए, असली पारिवारिक जीवन देने के लिए। तो इसलिए इस कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन को हमें अच्छे ढंग से पालन करना चाहिए और इसका खूब प्रचार करना चाहिए और हमें इस संसार की व्यर्थता को समझना चाहिए। इस संसार के इस झूठे पारिवारिक संबंधों में कुछ नहीं रखा, और जब किसी परिवार में भक्ति आती है तभी वो असली परिवार बनता है। अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, अ फैमिली दैट डांसेज टुगेदर advances together. A family that sings together, clings together. ये असली परिवार है. सब मिलकर नाचें तो सब लोग मिलकर असली में भक्ति में प्रगति करेंगे. और जितना हो सके, जैसे हम नारद मुनि का अगर एग्जाम्पल देखें अपने जीवन में, तो नारद मुनि की तरह हमें प्रचारक बनना चाहिए और प्रचार के किसी भी अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए. तो अगर हम हरियाशों का भी उदाहरण लें तो हमें एक आदर्श भक्त बनना चाहिए. दूसरे 1000 पुत्रों का उदाहरण लें तो हमें अपने वरिष्ठ भक्तों का मार्ग का पालन करना चाहिए. नारद मुनि का उदाहरण अपने जीवन में उतारें तो एक अच्छे प्रचारक रूप में प्रभुपाद कहते हैं कि नारद मुनि का प्रतिनिधि बन के हम सब लोगों को जीवन में ये वैराग्य का ज्ञान दें. और अगर हमें दक्ष का ही उदाहरण करना है तो हमें क्या करना चाहिए? दक्ष का भी कोई उदाहरण अपने जीवन में उतारना चाहेगा है? हाँ, कम से कम अपने बच्चों पर जबरदस्ती ना करें, बहुत बड़ी हिंसा है. उनको मौका तो दें और उनको जरूर उत्साहित करें कि वो अगर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो ब्रह्मचार्य की ट्रेनिंग अवश्य लें. बहुत जरूरी है. इस पूरे समाज में जो आधार है वो है ब्रह्मचार्य आश्रम. अगर हमने ब्रह्मचार्य आश्रम की ट्रेनिंग ही नहीं ली है तो गृहस्थ आश्रम में जाकर वो गृहस्थ आश्रम नहीं होगा, निश्चित उनसे गृह में भी होंगे. स्त्री और पुरुष एक दूसरे को केवल इंद्र तृप्ति की मशीन के रूप में देखेंगे और तभी हम देखते हैं कि इस घरों में क्लेश ही क्लेश है. तो इसलिए ब्रह्मचार्य का ट्रेनिंग लेना बहुत ही आवश्यक है. उसके बाद उस बालक की इच्छा है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता है या फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है. तो ये कल्चर केवल श्री प्रभुपाद जी का आंदोलन ही स्थापित कर सकता है. आप सब जो पारिवारिक जीवन में भक्त लोग जुड़े हैं और जो ब्रह्मचारी आश्रम में हम सब भक्त लोग हैं, हम सबको मिलकर इस पूरे समाज में क्रांति लानी है. कैसे ला सकते हैं क्रांति? जो गृहस्थ आश्रम में जुड़े हुए भक्त हैं, इन सबको आपस में मिलकर देखना चाहिए क्या हम अपने संतान का सही ढंग से लालन पालन कर रहे हैं. संतान के सामने माता पिता को कभी भी पैसे की चर्चा नहीं करनी चाहिए. अगर पैसों के विषय में चर्चा करेंगे तो संतान जान जाएगी कि जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही है. माता पिता को अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपनी संतान के सामने एक आदर्श उदाहरण उपस्थित करना चाहिए कि हाँ, ये वास्तव में जो भागवत का उपदेश देते हैं, भागवत का सुनने जाते हैं, इनका जीवन चरित्र कितना श्रेष्ठ है. और फिर अगर माता पिता को ये चिंता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाकर बिगड़ रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? इंडिया में भी आजकल होम स्कूलिंग शुरू हो गई है, तो क्यों ना हम घर में ही उनको पढ़ाएं. हमारे दो गुरु भाई एक हैं, क्या श्याम गोपाल हरि प्रभु है ना, अनंत रूपा प्रभु उनके पिताजी हैं, बोएसी में रहते हैं. आप सुना होगा ना, गोपाल हरि प्रभु हैं, राधा रमन प्रभु हैं, राधा रमन प्रभु रवि गुप्ता जो कि बैक टू गार्डन में आर्टिकल्स लिखते हैं, वो हिज होलीनेस हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज के शिष्य हैं. गोपाल हरि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के शिष्य हैं. दो भाई हैं, दोनों को होम स्कूलिंग की और दोनों ही निकल से 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली और दोनों ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा दोनों PhD कर रहे हैं. राधारमन प्रभु ने कर लिया है, तो वन ऑफ देम इज PhD और दूसरा PhD परस्यू कर रहे हैं. तो देखिए, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? या तो होम स्कूलिंग करें या फिर हम लोग एक कोई उठाकर आपस में हम मिलकर एक स्कूल खोलें जिसमें हम पूरा कृष्णा कॉन्शियस उनको एजुकेशन दें. जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक इस संसार में, इस पूरे दिल्ली के, कम से कम दिल्ली या दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के इस कल्चर को कैसे बदलेंगे? कुछ तो शुरुआत करें. हम लोग ये भागवतम सुनते हैं और उसके बाद कोई प्रैक्टिकल हम स्टेप नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं जब भी गृहस्थ भक्तों से बात होती है बहुत बुरी हालत है. समझ में नहीं आता कि बच्चों के आगे कैसे मार्गदर्शन किया जाए. हम लोगों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. और अगर जो कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन में नहीं है उनके बच्चे कैसे सही मार्ग पर चल सकते हैं बताइए. ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि बच्चे आकर हमें बताते हैं कि उनको गंदी आदतें कैसे पड़ी, क्योंकि हमने उन्हें अपने पिताजी को गंदी आदतों में रक्त देखा, उनके पिताजी को गंदी आदतों में देखकर हम भी उनके गंदी आदतों में फंस गए. तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। यहां पर बोला जा रहा है हरीशो के छोटे भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को देखो। तो अगर किसी नॉर्मल घर में बोले अपने बड़े भाइयों को देखो तो हिरण्याक्ष होगा और हिरण्यकश्यपु बनेगा, है ना, सब राक्षस ही बनेंगे। कोई उदाहरण ही नहीं है, ना पिताजी अच्छे उदाहरण है, भाई अच्छा उदाहरण है, सब बिगड़े हुए हैं, सब पोर्नोग्राफी देख रहे हैं घर के अंदर ही, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे भी यही करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि भक्तों के परिवार के बच्चे भी अब गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाते हैं, गलत संस्कार लेके आते हैं और उन संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या स्कूल जो है वो स्कूल क्या बना रहा है? वो तो भगवान को भुला रहा है। तो ऐसे स्कूलों का क्या लाभ, ऐसी एजुकेशन का क्या लाभ? ये अविद्या है, ये राक्षस बना रही है उनको। तो क्यों ना हम उनको अच्छा भक्त बनाएं, अच्छा चरित्र दें। अच्छे चरित्र देने के लिए कलो संघ शक्ति आपस में सब मिलकर, क्योंकि कोई भी बच्चा ऑड मैन आउट होना नहीं चाहता। वो बोलेगा कि क्या है, सब लोग जींस में घूम रहे, मुझे धोती डाल दी, मुझे बेवकूफ बना दिया। लड़कियां देखती हैं, अरे सब बड़े अच्छे स्कर्ट्स डाल के घूम रही है, मुझे इतना ये भैंजी बना दिया। हर कोई मॉडर्न दिखना चाहता है, आधुनिक दिखना चाहता है। चाहे पशु बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडर्न होना चाहिए, लेटेस्ट पशु होना चाहिए, है ना। ये हमारी दिमाग की सोच है। लेकिन अगर हम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे और एक शुद्ध चरित्र का एक उदाहरण उपस्थित करेंगे तो ये प्रभुपाद जी के आंदोलन में बहुत बड़ी सेवा होगी और हम ऐसा कर सकते हैं, ये संभव है। क्योंकि आज समाज में अगर किसी को बोलते हैं कि भगवत गीता भागवतम के संदेश को अपने जीवन में उतारो, किसी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाई नहीं दे रहा। हर किसी को ये केवल थियोरेटिकल नॉलेज नजर आ रही है कि ठीक है थोड़ा हरे कृष्ण जप करते हैं, थोड़ा कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है, हमें मन को शांति मिलती है, यहीं तक हमें नहीं रुकना है, यहीं तक नहीं रुकना है, इसको अपने जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना है और हम कर सकते हैं। हमारे बॉम्बे में अच्छे स्कूल्स हैं, चौपाटी में गोपाल गार्डन्स करके एक स्कूल है, अभी एक और बॉम्बे में स्कूल खुल रहा है, इसी ढंग से दिल्ली में भी हम ऐसा एक स्कूल खोल सकते हैं। जब तक स्कूल नहीं खुले तो होम स्कूलिंग के बारे में मालूम करें, होम स्कूलिंग करें, सब ग्रस्त भग लोग आपस में इसकी चर्चा करें। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी हम वेशभूषा पे ध्यान दें, जो मंदिर में आने वाले भक्त हैं उनको हम एजुकेट करें कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, कैसे हम संस्कृति का सेटिंग से पालन कर सकते हैं। भक्त लोग चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में है, अगर वो निवृत्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं तो सख्ती से निवृत्ति मार्ग का पालन करें, क्योंकि वो आधार है। श्रील भक्ति सांसवी ठाकुर महाराज से पूछा गया कि आपके जो शिष्यगण हैं इतने साल हो गए आश्रम में रहते हुए वो प्रगति नहीं कर रहे, तो भक्ति सांसवी महाराज ने बोला बिकॉज दे हैव सीक्रेट बैड हैबिट्स, उनकी सीक्रेट बैड हैबिट्स है जिसके कारण वो शुद्धता नहीं आ रही। तो हमें पूरे ढंग से शुद्धता से नियमों का पालन करना चाहिए। इस ढंग से अगर ईमानदारी से हम सब जो प्रभुपाद के दिए आदेशों का सख्ती से पालन करेंगे अपने अपने आश्रम के नियमों के अनुसार, फिर हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकते हैं और उस कम्युनिटी को द्वारा हम एक उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं समाज के सामने कि ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस। अन्यथा सब कुछ एक थ्योरेटिकल लगता है, किताबी बातें लगती हैं और फिर किताबी बातों से कोई प्रेरित नहीं होता। तो ये सब आज हम इस श्लोक से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का
जैसा आपने धन्यवाद भाई प्रवचन में प्रारंभ में आपने बताया कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो प्रवृत्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं, तो क्या मतलब हेडोनिज्म को प्रवृत्ति मार्ग भी कहा, क्या हेडोनिज्म को प्रवृत्ति मार्ग भी कहा जा सकता है? मतलब स्वेच्छाचारी व्यवहार को क्या प्रवृत्ति मार्ग भी कहा जा सकता है, मार्ग कहा जा सकता है?
हाँ, जो स्वेच्छाचारी है अपने मन की अनुसार चलना, ये भी कोई मार्ग है क्या? और हाँ, प्रवृत्ति मार्ग भी वैदिक मार्ग है और एक तरीके से प्रवृत्ति मार्ग का उद्देश्य ये है कि कुछ समय तक इंद्र तृप्ति करो, रेगुलेटेड इंद्र तृप्ति करो और फिर आप निवृत्ति मार्ग पर आ जाओ। लेकिन स्वेच्छानुसार चलना एक तरीके से ये तो केवल नरक का ही रास्ता है, ये मार्ग है केवल नर की ओर। दैट वे ओवर पिचिंग का अर्थ ये है कि हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को समझना चाहिए, कई बार पहली बार ही कोई भक्त आता है, हम पहली मीटिंग में उसको चार नियम बता देते हैं, है ना, कि भी चाय भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, कम से कम 16 वाला जो जप नहीं करता वो पशु है, ये है। वो बेचारे को इतना बता देते हैं, इतना बता देते हैं कि वो कहते हैं मेरे से नहीं होगा। तो हमें देखना चाहिए इसको क्या हो सकता है। तो दूसरी टोली आई दक्ष के पुत्रों की, नारद मुनि ने ये बोला आप तो बड़े भाई से प्रेम करते थे, बड़े भाइयों को देखो क्या किया उन्होंने, बस बड़े भाइयों को कुछ बताना था, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न करना कर दिया, उसके बाद काम चल रहा है अपना। तो देखना चाहिए कि सिचुएशन की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से प्रचार करें। दो नदियां दोनों दिशाओं में बैठती हैं, तो इसका ये पीछे बताया होगा, आप पढ़ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति दो प्रकार से कार्य करती है, सृजन तथा संघार के द्वारा। इसी तरह भौतिक प्रकृति रूप नदी दोनों दिशाओं में बहती है। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है वह इसकी लहरों में निमग्न हो जाता है, और चूंकि नदी के किनारों के निकट धारा अधिक तेज रहती है इसलिए वह बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। भौतिक प्रकृति दोनों दिशाओं में बह रही है। और सीक्रेट बैड हैबिट्स का अर्थ यह है कि नियमों को तोड़ना या फिर मन से नियम तोड़ना, ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, ये भी बैड हैबिट्स है। हाँ, ये आगे बहुत रोचक प्रसंग आएगा कि दक्ष कैसे कैसे उनको गालियां देते हैं नारद मुनि को। अगले श्लोकों में गालियां ही गालियां हैं नारद मुनि जी के लिए, और फिर श्राप देगा कि आपके किसी भी स्थान पर एक जगह टिक के ना रह सको, आपका घर ना बसे। तो ये गालियां हैं, हाँ। ये है ना, उसके दोनों पुत्रों को भक्ति के मार्ग में लगाया। हाँ जी, हाँ जी, अगर गृहस्थ लोग ऐसे दाढ़ी बढ़ाकर बाबा जी की तरह घूमने लगे, है ना, फैक्ट्री में जा रहे हैं, काम धंधा है, क्या फर्क पड़ता है ना, जो भी कर ले ठीक है, तो लेबर को कंट्रोल नहीं कर रहा, बिजनेस घाटे में चला गया, दुर्दशा हो गई उसकी, तो बोले क्यों भक्ति, भक्ति उसको सूट ही नहीं कर रही, बोले कोई भक्ति नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसको ऊपर से बिल्कुल ऐसा दिखाना चाहिए कि परिवार में बिल्कुल आसक्त है। हाँ, लेकिन भगवद गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को आम आदमी की तरह ही आचरण करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, उदाहरण उपस्थित करने के लिए, है ना। इंग्लिश में कहावत है ना, द ग्रेट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। जो बड़े लोग होते हैं कोई अलग कार्य नहीं करते, वो उसी कार्य को अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो जब वो कोई साधारण व्यक्ति आपसे डीलिंग करेगा तब देखेगा कि इस व्यक्ति का चरित्र है, करेक्टर है, तो उससे प्रभाव पड़ेगा कि आपकी डीलिंग्स कैसे है। आपने तिलक लगाया है, कंठी लगाई है, लेकिन बिजनेस डीलिंग में बेईमानी कर रहे हैं, तो बोला क्या है ये, उसका विश्वास ही उठ जाएगा। झूठ बोल रहे हैं, बोले विश्वास उठ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, राह चलते व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। आम आदमी के लिए आप प्रचार कीजिए ना, फिर जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उसको प्रचार कीजिए, ठीक है ना। जहां आपको ऐसे प्रचारक बनना है प्रचारक बनिए, जहां कैसे ग्रस्त नॉर्मल ग्रस्त बनना है वैसे रहिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न है कि हरेश्व को रूपक के थ्रू ही प्रचार क्यों किया, डायरेक्ट क्यों नहीं किया। इसको हम देख सकते हैं कि बिकॉज जो हरेश्व थे, नारद मुनि को लगे कि काफी बुद्धिमान लोग हैं, और इसलिए उनको लगा कि ऐसा करके, क्योंकि युवकों की इंटेलिजेंस को एजिटेट करना चाहिए, है ना। अगर हम कॉलेज में जाते हैं, हम देखते हैं, और कॉलेज में जाके सीधा भगवत गीता खोले कि आज हम भगवत गीता के अध्याय 5 से पाठ करेंगे, हम ये ही संस्पर्श जाप होगा ऐसे बोले, भगवत गीता क्लास दें, कोई भी सामने नहीं बैठेगा। हम लोग उसी संदेश को क्या बोलते हैं, माइंड कंट्रोल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब जो लगाया हुआ सामने देखिए सब एक चक्कर है ना, मेरा भारत महान, ये सब करके तो उसकी इंटेलिजेंस को एजिटेट किया जाता है। इज मेड टू थिंक, बात तो ठीक कह रहे हैं, कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग एब्जॉर्बिंग, तो फिर सोचते हैं, है ना। अगर युवक की इंटेलिजेंस को एजिटेट नहीं किया तो उसकी इंटेलिजेंस वैसे ही कंटेमिनेटेड हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो एक प्रचारक है युवक को सुनिश्चित ढंग से। ओके, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।